खुदावंद का इत्मीनान और तसल्ली आप सबके साथ हो। और खुदावंद आप सबको आज बड़ी बरकत दे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखना शुरू करें, आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने दिल, दिमाग, सोच, ख्याल को, अपनी रूहों को उसके सुपुर्द करेंगे, उसके हवाला करेंगे, उसके हजूर अपने आप को फरमा बरदार बना देंगे, खाकसार बना देंगे और उससे हिकमत और दनाई मांगेंगे। क्योंकि याकूब के खत में खुदावन का बंदा याकूब कहता है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदावन खुदा से मांगे, वो बगैर मलामत किए उनको देता है। सो आए हम खुदा से वही हिकमत और दनाई मांगें जो हमें पाक रूह के वसीला से देता है। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे आए हुए तमाम बेटों और बेटियों के लिए, बुजुर्गों और बच्चों के लिए जो खुदावन तेरे नाम से कहलाते हैं इस मुल्क में, जो तेरे नाम से मुकद्दस किए गए हैं, जो तुझ पर, तेरे बेटे पर ईमान लाने के बायस तेरा खानदान बने हैं, तेरा शुक्र हो। आज इस तहरीरी कलाम को, बाइबल मुकद्दस के एक एक लफ्ज को ले और हम सब की दिलों की आंखों को रोशन कर, ताकि हम जो कुछ सीखें हम उससे बरकत पाएं और दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, और हमारे ईमान के बायस हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले और बहुत सी जिंदगियां तेरे बेटे यीशु मसीह को जानने वाले बने। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, उसकी 15वीं आयत को आज हम पढ़ेंगे। और हम इसमें से सीखेंगे चंद एक बातें, और आप सब जानते हैं कि हम आयत बा आयत इस खत का मुतालिया कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमें 2 साल और लगेंगे, 3 साल और लगेंगे इस खत को मुकम्मल करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम इस 15वीं आयत को पढ़ें, आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी बाइबल मुकद्दस का हम मतालिया करते हैं तो हमें किसी भी किताब को या खत को जब शुरू करते हैं तो उसकी बड़ी तस्वीर को देखने की ज़रूरत है कि लिखने वाला रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में क्या चाहता है कि सुनने वाले, पढ़ने वाले उसमें से सीखें। मिसाल के तौर पर इस इफ़सियों के खत को जब हम पढ़ते हैं तो हम 1 मिनट में इसका मतालिया कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि पालूस रसूल रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में क्या चाहता है कि ईमानदार जाने। जब हम पहले 3 बाप को देखते हैं तो पहले 3 बाप इस बात को बयान करते हैं कि मसीह यसु में ईमानदारों की हालत, मसीह यसु में ईमानदारों की शनाख्त, जैसे हमारी जात से पता चल जाता है कि ये बेटा गिल फैमिली से है, ये बेटी फलां फैमिली से है, उनकी जात क्या है, और इससे पता चल जाता है कि वो कौन से खानदान से है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में पालूस चाहता है कि ईमानदार अपनी शिनाखत, अपनी हालत, अपनी पहचान को समझें, जानें। तो पहले 3 बात बयान करते हैं कि मसीह यसू में हम कौन हैं, और फिर चौथे बाप की पहली आयत से लेकर 6 बाप की 9वीं आयत तक पालूस रसूल कहता है कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारा मकसद क्या है इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने का। और फिर 6 बाप की 10वीं आयत से लेकर बाप के आखिर तक वो कहता है कि हमें अपने खुदावंद में कायम रहने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी रूहानी जंग लगी हुई है। तो आए मेरे साथ 15वीं आयत को देखें, और हम यहाँ पर सीख रहे हैं उन बुनियादी बातों को कि हम मसीह में कौन हैं, हमें मसीह में क्या कुछ हासिल है, कौन सी बरकत, कौन सी कुव्वत, कौन सा नाम, कौन सी नेमतें हमें हासिल हैं। मिसाल के तौर पर जैसे जब कोई बेटी या बेटा किसी घर में पैदा होता है तो सबसे पहले वो बेटी या बेटा अपने पहले 2 सालों में क्या सीखता है, वो सीखती है या सीखता है बैठना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें सीखने की ज़रूरत है रूहानी तौर पर हम कौन हैं। जब बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता है तो फिर वो चलना शुरू करता है। इसी तरह पालूस कहता है कि तुम जान गए हो, अब तुम्हें चलने की ज़रूरत है, उस ईमान के ईमान को थामे रहने और उस ईमान को फैलाने की ज़रूरत है, नूर में चलने की ज़रूरत है। और जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसके बाद वो क्या होता है, खड़ा होना सीखता है। इसी तरह हमें भी रूहानी तौर पर कायम होने की, खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुखालफ दिन रात इसी बात में लगा हुआ है कि इस कलाम को जो आपके हाथों में है दुनिया तक ना पहुंचे। हो सकता है बहुत दफ़ा जब दुआ पर आने का इरादा बहुत दफ़ा ईमानदार करते हैं, बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं, घर में कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है इससे पहले कि दुआ पर आए। तो इसीलिए मेरे साथ पढ़ें 15वीं आयत को, हम इसीलिए आयत ब आयत मुतालिया कर रहे हैं। तो पालूस कहता है 15वीं आयत में, इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यसु पर है और सब मकसों पर जाहिर है हाल सुनकर। इससे पहले कि हम इस पर से सीखना शुरू करें, सब मेरे साथ इस आयत को कहें, इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मकसों पर जाहिर है हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। हाँ जी, आज हम सीखेंगे इस लफ्ज को, इसी सबब से मैं भी। यहां पर जो लिखने वाला है, जो बात कर रहा है, वो कौन है? पालूस रसूल। पालूस रसूल किस वजह से वो खुदा का शुक्र कर रहा है, किस वजह से वो खुदा के नाम की तारीफ कर रहा है, किस वजह से वो दुआ कर रहा है, आज हम देखेंगे कि क्या बात पालूस रसूल कर रहा है, कि किस वजह से। मिसाल के तौर पर जब हम बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए, मुर्गा या गोश्त लेने के लिए, तो हमारे पास वजह होती है बाजार जाने के लिए, हम वैसे ही बाजार नहीं चले जाते। जूतों की दुकान पर जब जाते हैं तो कोई वजह होती है कि हम वहाँ उस दुकान पर गए हैं, चाहे वो बाटा की है, चाहे वो सर्वस की है दुकान। इसी तरह पालूस कहता है, इसी सबब से मैं भी। कौन सा सबब है? हम पिछली 14 आयतों को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सीख चुके हैं। पालूस वो वजह बयान करता है कि खुदावंद भी खुदा में तुम्हें क्या कुछ हासिल है, वो बयान करके हटा है, बयान कर चुका है कि खुदा में तुम्हें क्या कुछ हासिल है। जब हम मतालिया करते हैं, पढ़ते हैं इस खत पहली 14 आयात को, तो पालूस कहता है कि खुदा बाप में तुम्हें कौन सी रूहानी नेमतें हासिल हैं, तुम्हारे लिए खुदा बाप का आसमानी खजाना खुला हुआ है। और ये क्या है, तीसरी आयत से छठी आयत तक वो कहता है कि खुदा में तुम्हें क्या कुछ हासिल है मसीह के वसीला से, जिसमें वो कहता है हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, उसने हमें चुन लिया यानी कि अलहदा किया, हम उसमें उसकी मोहब्बत के बायस पाक बने, बेऐब बने, उसने हमें मुकर्रर कर दिया कि मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो जाएं, हम जो पहले लावारस से, उसने कहा कि अब हमें खुदा में मसीह के वसीला से वारस बनाया गया है, ले पालक बेटे होने का हक मिला है। और फिर 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक वो कहता है कि हमको मकल सी यानी कि गुनाहों की मुकम्मल माफी मिली है, खुदामंद यीशु मसीह ने हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए और वो उन गुनाहों को दोबारा याद तक नहीं करता, और उसने वो गुनाह जैसे मशरक के मगरब से दूर फेंक दिए हैं। और फिर वो कहता है हर तरह की हमें हिकमत और दनाई कसरत से दी है। फिर वो कहता है हम पर उसने भेद जाहिर किए हैं। फिर वो कहता है कि हमें उसमें मीरास मिली है। और फिर वो कहता है कि हम उस खुशखबरी के बायस उसके लोग बन गए हैं। और फिर कहता है कि तुम्हें रूहुल कुद्दस हासिल है। और यही वजह है पालूस रसूल कहता है इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान है, जैसे आपके ईमान को जब मैं अपने इस गिरजा घर में जहां पर मैं रह रहा हूं आपके बारे में जब बात करता हूं तो वो आपके सबब से खुदा का शुक्र करते हैं। मेरी बीवी कैरी, पादरी साहब और दूसरे भाई बहन जो यहाँ पर रहते हैं, जो कभी पहले आपको मिले नहीं, जिन्होंने आपको कभी शख्सी तौर पर गले नहीं लगाया, हो सकता है बहुतों के आपके नाम वो नहीं कह सकते, लेकिन वो आपके ईमान का हाल सुनते हैं, उन्होंने आपके बारे में सुना है। मेरे साथ एक हवाला देखें क्यों पालूस रसूल कहता है उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान, आपके ईमान का हाल सुनकर। वैसे ही हम देखेंगे रोमियो पहला बाप उसकी 8 आयत, जैसे भाई ताहर, भाई क्रिस, राजू और रजेश जाते हैं दूसरे चकूप में, जैसा कि 51 चक में बाबा तफायल उनकी फैमिली बैठी हुई है, तो हम सबको पता है कि वो मसीही खानदान है। तो हमने क्या सुना हुआ है कि वो खुदावन में क्या है, हमारा खानदान है रूहानी तौर पर। इसीलिए पालूस रोमियो पहला बाप उसकी 8 आयत में कहता है अव्वल तो मैं तुम्हारे बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शहरा हो रहा है। पालू सादा सी बात कह रहा है कि मैं हर रोज सबसे पहली बात क्या करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो ईमान है। रूमी हुकूमत, रूमी लोग जो उस दौर उस शहर में रहते हैं, पालूस उनको लिखता है कि तुम्हारे ईमान के बायस मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और तुम्हारा ईमान दुनिया भर में फैल रहा है, तुम्हारे बारे में लोग जान रहे हैं तुम्हारे ईमान का हाल सुनकर। जैसे मिसाल के तौर पर, बच्चों गौर से सुनो, जैसे मिसाल के तौर पर अरान में एक पादरी साहब है जो जिनको सजाए मौत का हुक्म दिया गया है, लेकिन उसका ईमान का हाल सुनकर आज पूरी दुनिया में क्या लोग कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो अरान में जो पादरी यूसुफ है वो मौत के तख्ते पर ना जाए बल्कि उसे रहाई मिल जाए। हमारे पाकिस्तान में एक बहन आसिया बीबी है, वो पिछले सालों से उसे भी सजाए मौत का हुक्म हुआ है। किस वास्ते? क्योंकि उसका ईमान यीशु मसीह पर है। और उसके गांव में क्या हुआ, जब वो पानी भर रहे थे कुछ बातचीत हुई तो उस पर इल्ज़ाम लगा कि उसने खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान रखती है उसने बुरे अल्फाज कहे हैं, इस बायस उसे ये सजा मिल रही है। इसी तरह आप जो यहाँ पर पाकिस्तान आर्फ वाला में रह रहे हैं, जब जैसे आप इकट्ठे हैं, मैं अमेरिका में हूँ, तो मेरे बायस लोग खुदा का शुक्र करते हैं, हर रोज दुआ करते हैं आपके लिए क्योंकि आपका ईमान का हाल सुनकर वो खुदा के हजूर झुकते हैं। इसीलिए पालूस कहता है कि तुम्हारा ईमान दुनिया भर में क्या हो रहा है, जाहिर हो रहा है, दुनिया भर में तुम मशहूर हो रहे हो तुम्हारे ईमान के बायस। सो यही सबब पालूस रसूल इफिसियों पहला बाप 15वीं आयत में कहता है कि तुम्हें वो तमाम रूहानी बरकात हासिल है इसलिए कि तुम्हारे दरमियान तुम्हारा जो ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है और सब मकदसों पर जाहिर है। आपको जानने की जरूरत है कि 51 चक में कलीसिया जो मुकद्दस लोग बैठे हैं वो आपका खानदान है। 23 चक में जो मुकद्दस लोग बैठे हैं वो मसीह में आपका खानदान है। 49 चक में जो लोग बैठे हैं वो मसीह में आपका खानदान है। पुरानी क्रिश्चियन कॉलोनी में जो लोग बसे हुए हैं वो आपका खानदान है। 57 चक में बैठे हुए ईमानदार वो आपका खानदान है। डॉक्टर वाला में, बूढ़े वाला में, यानी जहां कहीं भी पाकिस्तान में मसीही ईमानदार बसे हुए हैं वो मसीह में क्या है, खानदान है। हम खानदान के सूरत हैं, इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है। पालूस कहता है तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। हमें हर रोज एक दूसरे के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, फलां बेटी फलां बच्चा तेरी पहचान में भर रहा है। हम हर रोज आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, नई क्रिश्चियन कॉलोनी के ईमानदार तुझ में तरक्की कर रहे हैं। हर रोज आपको अपनी दुआओं में बच्चे जो स्कूल आते हैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। आतफ गौर से सुनो, तो हमें हर रोज शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। जैसे आपके लिए हर रोज यहाँ पर चर्च में दुआ करते हैं कि खुदावन पाकिस्तान आरफ वाला न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में उन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, उस्तादों के लिए जो खिदमत के लिए गांव-गांव में जाते हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि वो तेरी हिफाजत में हैं। और पालूस कहता है कि मैं बाज नहीं आता। इसलिए दुआ करना सिर्फ मुझ पर ही लाजम नहीं बल्कि हम सब पर लाजम है। अपनी दुआओं में हर रोज एक दूसरे को याद करने की जरूरत है। तो आगे चलकर हम सीखेंगे आने वाली आयात में रूहुल कुद्दस के बारे में कि रूहुल कुद्दस कौन है, हमें किस लिए दिया गया। लेकिन आज जब मैं मुतालिया पढ़ रहा था बाइबल मुकद्दस तो पाकरू ने कहा कि सीधा चल जैसे तुझे जरूरत है 15वीं आयत में से मेरे लोगों तक इस बात को पहुंचा कि तुम्हारे सबब से खुदा की शुक्रगुजारी कहाँ कहाँ पर होती है। इसलिए आप अजीम लोग हैं, इसलिए आप मुकद्दसीन हैं, इसलिए आप खुदा की चुनी हुई कौम हैं और खुदा आपकी दुआओं को सुनता है। जब ईमानदार इस जमीन पर अपने लबों को खुदा के हजूर खोलता है तो उसकी दुआ उसके हजूर पहुंचती है। क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे हम ईमानदारों को खुदा तक रसाई यानी कि पहुंच हासिल है। फोन के सिग्नल तो खराब हो सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड तो खराब हो सकती है, लेकिन जब हम रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में दुआ करते हैं तो हमारी दुआ आसमानों को चीरती हुई खुदा के हजूर पहुंच जाती है। इसलिए खुदा ने आपको बहुत ज्यादा नेमतें, बरकतें, कुदरतें, कुदरत दी है। आगे चलकर हम इसे सीखेंगे। इसलिए 15वीं आयत को मेरे साथ एक बार फिर पढ़ें और इस पर गौर करें आज सारा दिन में कि हमें क्या करने की जरूरत है। इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यसु पर है, और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। आए हम खुदा के हजूर झुकें। कल को हम और ज्यादा सीखेंगे 16वीं और 17वीं आयत में से एतवार की इबादत में, सुबह की इबादत में। इसलिए अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको लेकर आए ताकि हम सब इस खुदा के कलाम से सीखें और दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। और आपके ईमान के बायस आरफ वाला शहर में यसु मसीह के नाम की मनाती हो, आपकी जिंदगी के बायस यसु मसीह का नाम जाना पहचाना जाए। खुदा बाप तेरे मुकद्दस लोगों के लिए, पाक किए हुए लोगों के लिए तेरा शुक्र हो। सब कुछ छू, बड़ी बरकत दे। और आज हमने जो कुछ सीखा है हम उसे कबूल करके थामे रखने वाले बने और दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, बहनों भाइयों को, जिनके साथ कारोबार करते हैं, सब पर इस बात को अयां करने वाले बने, जाहिर करने वाले बने कि हमें खुदा ने बेऐब ठहराया है, हम उसकी उम्मत हैं। शुरू और आज के पैगाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।